खुशियों से भरी हमारी जिंदगानी, और अब समय भी ऐसा है, बाप दादा ने इशारा दिया है, अब सेवा का रूप बदल गया है, अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा अब हमें सेवा करनी है, अब समय की ये पुकार है। किस तरह हम अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा सेवा कर सकते हैं, आइए इसी विषय पर हम ज्ञान बिंदु सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है बहुत दूर देश से पधारे हुए मेहमान, आदरणीय रजनी बहन जी जो जापान से आई हुई है। सभी एक हाथ की ताली बजाकर रजनी बहन जी का स्वागत करेंगे। आप बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं, पूरे परिवार सहित आपने दिल्ली में ये ज्ञान प्राप्त किया। 1979 से लेकर आप विदेश सेवा में उपस्थित हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक स्थानों पर सेवा देते हुए वर्तमान समय आप जापान एवं फिलीपाइंस तथा आसपास के क्षेत्रों का कारोबार बड़े सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। तो आइए हम क्लास सुनेंगे आदरणीय रजनी बहन जी, खुशनुमा चेहरे द्वारा सेवा।
ओम शांति। आज का विषय है खुशनुमा चेहरा और उसके द्वारा सेवा। आप सभी खुश हैं तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो जो आपके साथ बैठा है ना, उसको बोलो, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। बाबा ने हम सबको खुशी का वरदान ब्राह्मण जन्म लेते ही दे दिया। जिस दिन से ये पहचान आई कि मैं ब्राह्मण हूँ तो खुशी आई। और दूसरा परिवार, दैवी परिवार को देखकर हम खुश होते हैं। आप खुश हैं ना, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं और वो भी बाबा पहचान देते हैं कि ये तुम्हारा कल्प पहले वाला परिवार है। ये कौन सा परिवार है, इसकी क्या विशेषता है जिससे हमको खुशी होती है कि ये बहुत पुराना परिवार है और सतयुग का पहला परिवार, लक्ष्मी नारायण का ये पहली फैमिली है जो सारे दुनिया में राज्य करते हैं। तो दैवी परिवार, ब्राह्मण परिवार, इन एक दूसरे को देख के हमको खुशी होती है। फिर ये भी खुशी होती है कि हम बाबा को मिले। 2 दिन में बाबा आने वाले हैं, आप सब खुश हैं ना, बाबा को मिलेंगे और मिल भी चुके हैं, मिलेंगे भी, रोज मिलते भी हैं, वो भी खुशी है। और तीसरा, बाबा ने हम सबको ज्ञान रतन देते हैं, रोज झोली भरते हैं सुबह सुबह, उसकी भी खुशी है। ब्रह्मा भोजन खाते हैं ना सभी, उसकी भी खुशी है। टोली खाते हैं सभी, उसकी भी खुशी है। दादियों को भी मिलते हैं, उसकी भी खुशी है। ये सब खुशी तो बाबा ने हम सबको दे दी है, दे भी रहे हैं, देते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि खुशनुमा चेहरे से सेवा करो। तो अभी हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। एक है ये चेहरा, दूसरा है आत्मा का चेहरा। आत्मा स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, हमारी स्मृति में क्या रहे जिससे हमको खुशी रहे। तो पहली स्मृति बाबा ने दिलाई है हम सबको कि आप शुद्ध आत्मा हो। आप है ना सभी शुद्ध आत्मा। शुद्ध माना शुद्ध सोचने वाली आत्मा, खाली कहना नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा, परंतु शुद्ध विचार करने वाली मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है। और दूसरा कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने कहा कि परम धाम से हम आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, इन कर्म इंद्रों द्वारा कार्य कराते हैं, तो आंखों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना जिससे हमको खुशी हो वो है दूसरों के गुण देखना, अच्छाई देखना। और मुख द्वारा बाबा ने कहा खुशी कैसे होगी, जब आप ज्ञान रतन का दान देंगे। तीसरा कानों द्वारा बाबा के ज्ञान अमृत वचन सुनते हैं तो खुशी होती है। तो जब आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करती है तो खुशी होती है। और दृष्टि कौन सी हो, दृष्टि हो सबके प्रति भले की, कल्याण की। और कृति कौन सी हो, कर्म कौन सा हो, सुख देने का। तो जब हमारे स्मृति में और वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में भाई भाई की दृष्टि होगी, अच्छाई देखने की दृष्टि होगी, अच्छी बात सुनने की वृत्ति होगी, तो खुशी जमा होती रहेगी। एक बार ब्रह्मा बाबा बहुत खुशी में बाबा डांस कर रहे थे, तो बाबा को कहा बाबा आप कैसे डांस कर रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है ही नहीं जो मैं छिपाऊं, मेरा दिल एकदम साफ है, स्वच्छ है, कुछ छिपा हुआ नहीं है अंदर, झूठ मूठ छल कपट सब खत्म हो गया, सारी गंदगी निकल गई, तो खुशी होती है। कहते हैं ना सच तो बीठो नाच, जो सच्चा होता है वो सदा हल्का रहता है, हल्के के कारण वो सदा डांस करता है, खुश रहता है। तुम्हारे दिल में इतनी सफाई हो, इतनी सच्चाई हो, तभी जाकर के हमको खुशी रह सकती है। क्योंकि खुशी को भी कमाना पड़ता है, कमाना माना अर्न करना पड़ता है, खुशी ऐसे नहीं आ जाएगी। हा? चलो हमको किसी ने टोली खिला दी, दो मिनट खुशी आई, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो हमारी खुशी गायब हो गई। या हमने जो सोचा था कि ये करेंगे आज नहीं हो पाया, किसी ने सहयोग नहीं दिया तो हमारी खुशी गायब हो गई। या कोई अपेक्षा करते हैं हम लोगों से, इच्छा रखते हैं हम नहीं पूर्ण कर पाते तो खुशी गायब हो जाती है। तो खुशी को कायम रखने के लिए पहली बात हम सबको रोज अपने अंदर की सफाई करनी है, अपनी फीलिंग्स जो होती है ना, हमारी फीलिंग्स उसको साफ रखना है अपने प्रति और दूसरों के प्रति। कभी भी हमारे अंदर भावनाएं जो फीलिंग्स हैं अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी खराब ना हो, शुद्ध रहें। कहते हैं कि जैसे सुबह हमने योग किया, अमृत वेला मुरली पढ़ी और फिर कर्म योगी बन के रहे, लेकिन शाम को योग किया, फिर रात को सोते समय हम देखें कि हमारी फीलिंग्स कैसे हैं। यदि हमारी फीलिंग्स हल्की हैं, खुश हैं, तो इसका मतलब सारा दिन हमारा कर्म अच्छा हुआ है, तो खुशी रहेगी। और यदि हमने सारा दिन में चलो किसी को कुछ गुस्सा कर दिया, चिड़चिड़े बन गए, या सहयोग नहीं दिया, या कोई भी बात पर हम अपसेट हो गए, कुछ तू मैं करके आ गए, हाँ थोड़ा छल कपट हो गया, थोड़ा दुखी हो गए, उलझ गए, सारे दिन में यदि ये हो गया तो खुशी खत्म। खुशी तब रहेगी जब हम स्थिर बुद्धि होंगे। कुछ भी होता रहे लेकिन हमारी खुशी गायब न हो। बाबा ने कहा था ना, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं। हम रोज सुनते हैं ना मुरली में, तो बाबा कहते हैं खुशी आपकी प्रॉपर्टी है, खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और खुशी आपकी एक ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो खुश रहना हो तो पहली बात हम रोज अपने अंदर सुबह से शाम तक ये पक्का रखें कि हमको अपनी फीलिंग्स भावनाएं साफ रखनी है। कुछ भी हो जाए हमको अपने अंदर न अपने प्रति न औरों के प्रति खराब नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है और गलत नहीं सोचना है, बदले की भावना से नहीं सोचना है, तब जाकर के हमारी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, हम खुश रहेंगे। और दूसरा ये है कि खुश नमा चेहरा, कि हमारा चेहरा जो है बाबा कहते हैं जैसे अंदर जो भी भरा हुआ होगा वो चेहरे से दिखाई देगा। हमारे अंदर सच्चाई भरी हुई है, शुद्धता भरी हुई है तो चेहरे से चमक आएगी। यदि हमारे अंदर छल कपट है या नेगेटिव भाव है या कुछ प्रकार की चिंता में हम हैं या गम में हैं या कल जो कुछ हो गया था हमारे जीवन में हम उसके लिए सोच रहे हैं, भारी हैं, तो हमारे चेहरे से खुशी दिखाई नहीं देगी। हालांकि हम मुरली भी सुने, अमृत वेला भी करें, लेकिन अंदर से हमने अपने को ठीक नहीं किया तो खुशी नहीं रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खुश नमा चेहरा बनाने के लिए अंदर ही अंदर अपना मन को बिजी रखो। किस में बिजी रखो? बाबा ने कल भी कहा था, सेवा में और याद में। और तीसरा ऐड करते हैं, बाबा कहते हैं कि हमेशा विचार सागर मंथन करने में अपने मन को बिजी रखो। कितनी भी बार मुरली पढ़ें, बार बार पढ़ें बाबा की मुरली, रिवाइज करें ताकि हमारे मन के विचार शुद्ध होते रहें और उसमें ताकत भरती रहे, तब जाकर के खुशी आएगी। तो हम सारे दिन में अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ याद रखें। जैसे स्टूडेंट होता है वो स्कूल जाता है, फिर घर में आके क्या करता है स्टूडेंट? होमवर्क करता है ना, घर का काम मिलता है उसको, तो वो घर का काम अच्छी तरह करके जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। आप सबको याद होगा अपना विद्यार्थी जीवन है, जब स्कूल जाते हैं तो काम किया होता है तो कितना खुशी होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सुबह हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो जैसे गाय है वो घास उगाती है, तो ऐसे ही हम अपने बाबा के मुरली के महावाक्य अपने मन में विचार करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, उसका मंथन करते रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा जो हमारी खुशी की ऊर्जा है, जो मोटिवेशन की ऊर्जा है, जो सुख पाने की ऊर्जा है, जो सुख की फीलिंग्स में रहने की ऊर्जा है, वो बनती रहेगी, है ना। जैसे सोलार होता है ना, उसकी सूर्य की रोशनी से, शक्ति से उसकी शक्ति बनती जाती है, सारा दिन बनती रहती है, है? तो ऐसे ही हमारे मन के विचार जो हैं, जितना बाबा के साथ लगे रहेंगे तो उतनी हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा बनती रहेगी, शक्ति बनती रहेगी खुशी की। और खुशी गायब क्यों होती है हमारे ब्राह्मण जीवन में, वो अभी हम थोड़ा सा सोचें, है? हमारा ब्राह्मण जीवन बाबा ने कहा कौन सा जीवन है? प्राप्ति वाला जीवन, ना कि पश्चाताप वाला जीवन। कौन सा जीवन है? प्राप्ति वाला, पश्चाताप वाला नहीं। लौकिक दुनिया में थोड़ा सा भी लोग खराब काम करते हैं फिर पश्चाताप में चले जाते हैं। और बाबा ने हमको तीन कालों का ज्ञान दे दिया, कहा बच्चे कर्म करने से पहले सोचो, सोच कर फिर बोलो और सोच कर कर्म करो, ताकि फिर हमको पश्चाताप में ना जाना पड़े। क्योंकि जितना हम कर्म सोच के करेंगे और उसका फल जो आएगा वो अच्छा होगा। यदि हमने नहीं सोचा, बिना सोचे बोल दिया और फिर उस कर्म का फल भी वैसा ही होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी को कायम रखने के लिए हर कर्म सोच के करो, बाबा की याद में रह के करो। बाबा की याद, बाबा की याद का अर्थ क्या है? बाबा को हम कैसे याद करें कर्म करने से पहले? जैसे खाना खाते हैं तो ये भी कर्म है खाना खाना, ठीक है ना। तो उसको उससे पहले हम क्या करते हैं, दृष्टि देते हैं ना, भोजन को आप सभी देते हो दृष्टि, जल्दी जल्दी तो नहीं खाते हो, देते हैं ना दृष्टि, बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा को याद करके खाएंगे तो आसक्ति नहीं होगी ना, नहीं, यदि नहीं याद करके खाएंगे तो लालच आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, फिर कहेंगे ये बड़ा टेस्टी चीज है और खा लेते हैं, वो उसमें चला जाएगा मन, तो बाबा की याद में खाएंगे तो आसक्ति से दूर रहेंगे और वही खाना हमारे लिए खून शक्ति बन जाएगा शरीर के लिए। तो कर्म करने से पहले बाबा कहते हैं, जैसे खाना खाते हैं उससे पहले हम बाबा को याद करते हैं, ऐसे ही हम एक दूसरे के संबंध में भी तो आते हैं ना, रोज व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये संबंध के कर्म में आने से पहले बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो खुशी रहे। तो क्या याद करें, जब हम एक दूसरे के संबंध में आते हैं दो बातें याद रखें। बाबा ने दो हफ्ते पहले भी मुरली में कहा था कि पहला तो ये याद करो कि मैं आत्मा, इस आत्मा भाई से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, ये आत्मा भी एक भाई है, मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। तो यदि हम आत्मिक स्मृति में रह के उससे बात करेंगे तो क्या फल होगा, उसका रिजल्ट होगा एक दूसरे के साथ स्नेह और सहयोग, स्नेह और सहयोग। यदि हमको स्नेह और सहयोग एक दूसरे का लेना है तो हम किस स्मृति से बात करें, भाई भाई की स्मृति से, आत्मिक स्मृति से, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, देह अभिमान आएगा तो उसकी निशानी क्या होगी, तू तू मैं और ये फलाना ये दिस, ये कुछ ना कुछ और प्रकार के विचार आ जाएंगे मन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं संबंध में आत्मिक स्मृति रहे तो खुशी रहेगी, यदि देह का भान आ गया तो स्मृति नहीं रहेगी। तो वास्तव में देह का भान किसको कहते हैं, ये देह तो है, देह को तो खाना भी खिलाना है और एक्सरसाइज भी करानी है और रेस्ट भी देना है ताकि ठीक चलता रहे, ठीक है, परंतु देह का भान का मतलब है कि जैसे मान लो जब मैं ज्ञान में आई तो ज्ञान से पहले मान लो मैं प्रिंसिपल थी स्कूल की, तो अभी मैं प्रिंसिपल नहीं हूं लेकिन मन में रखा हुआ है मैं प्रिंसिपल हूं, मैं बहुत अमीर घर के हूं, मैं फलानी हूं, बॉस हूं, लेकिन अभी तो मैं आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, ठीक है ना। यदि हम ये देह का जो रोल, देह की जो पोजीशन थी पहले, वो हम अपने मन में रख देते हैं, वो बर्डन लेके चलते हैं और उस बर्डन से, बोझ से काम करते हैं और फिर हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, तो उसमें हमारा देह का भान, देह का अभिमान, वो बाबा कहते हैं कि वो निकालो, क्योंकि आत्मिक स्मृति मींस मैं आत्मा ज्योति बिंदु और आप भी आत्मा ज्योति बिंदु, आप भी आत्मा तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, मैं भी आत्मा तपस्वी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम एक दूसरे को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, बाबा के बच्चे के हिसाब से, ना कि बॉस के हिसाब से, ना कि प्रिंसिपल के हिसाब से, ना कि ऊंच नीच के हिसाब से, ना कि अमीर गरीब के हिसाब से, हैं? वो भान हमारे निकल जाएं, तब हमारे अंदर वो खुशी रह सकती है। और बाबा कहते हैं कि खुश नमा चेहरा बनाने के लिए रोज अपने, बाबा कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो है ना, खुशी की इंग्रेडिएंट्स, उसको आप अंदर ही अंदर घोटते रहो, चर्न करते रहो, विचार सगर मंथन में लाते रहो, क्योंकि यहीं पर माया आती है जो हमारी खुशी को गायब कर देती है। मान लो हम सुबह अमृत वेला करते हैं, तो बाबा ने कल भी कहा परसों कि अमृत वेला कैसे करना है, सुबह उठकर के ये वरदानी समय है, वरदाता साथ है, सर्व शक्तियां दे रहा है बाबा, वो शक्ति का हमको अनुभव करना है। क्योंकि सबसे आसान बात तो यही है कि आत्मा शरीर में है, हम आपको देख रहे हैं आंखों से, तो आसान है। परंतु शिव बाबा रहते हैं परम धाम में हैं? और मैं आत्मा शरीर में हूँ, और हमको पहुंचना है परम धाम, शिव बाबा के पास परम धाम, और वहां पर शिव बाबा से हमको शक्ति का अनुभव करना है, प्यार का अनुभव करना है। तो ये मन का काम है, बुद्धि का काम हो गया ना ये, तो मन बुद्धि, शरीर तो जा नहीं सकता वहां, लेकिन मन तो पहुंच सकता है। तो हम शिव बाबा से जब हम बातचीत करें, उसे हम योग लगाते हैं, और उसके रिटर्न में बाबा हमको शक्ति का वरदान देते हैं। और वो भी किस समय, कौन सा समय बाबा ने बताया, कौन सा समय? अमृत वेला। क्यों? क्योंकि अमृत वेला ही बाबा के पास सर्व शक्तियां, बाबा ने कहा कि खजाने खुले पड़े हैं, हैं? बाबा भोलानाथ है, और उस समय बच्चों को बाबा भोलानाथ के हिसाब से झोली भर देता है। उस समय बाबा ने कहा भंडारे खुले पड़े हैं, हैं? तो इसलिए बाबा से हम जितना झोली भरेंगे तो उतना हम खुश रहेंगे। हाँ, एक दूसरे, जैसे दुनिया में भी देखो, भाई बहन कमाएं और आप कहेंगे मेरे को पैसा दो, वो कितना देते रहेंगे, चलो थोड़ा बहुत दे देंगे आपको, हैं? परंतु जो बाप है वो तो आपको पूरा वर्षा दे देता है ना। तो शिव बाबा हमको पूरा वर्षा देने आए हैं, और भाई बहनों से तो थोड़ा मिलेगा हैं? लेकिन बाप से तो अनगिनत मिलेगा। तो आप सभी लेते हैं सुबह के टाइम बाबा से, कितनी झोली भरते हैं, आधी या पूरी? पूरी, लेकिन पूरी भरते हैं, खाली तो नहीं हो जाती, हाँ, उसमें देखना है सुराख तो नहीं है, हैं? क्योंकि यदि हम पूरी भर रहे हैं झोली, बुद्धि की झोली, यदि हमको इतना अच्छे अनुभव हो रहे हैं बाबा की शक्ति के, तो सारे दिन में हमारा चेहरा कैसा रहेगा? खुश रहेगा, खुश रहेगा। खुश माना कि खाली हम ऊपर से खुशी दिखाएं, अंदर से डिस्टर्ब हो, वो वाला चेहरा नहीं, अंदर से हमारे अंदर वो इंटरनल, जो बाबा कहते हैं ना, आंतरिक खुशी, जो सच्ची खुशी है, वो बनती रहेगी। लेकिन मैंने देखा कि सच्ची खुशी बनाने के लिए सच्चे कर्म करने पड़ते हैं, हाँ, ट्रूथफुल एक्शन, एकदम ईमानदार, सच्चाई वाला कर्म, कोई छिपा हुआ नहीं हो अंदर, कुछ भी एजेंडा ना हो अंदर, हाँ। कई बार हम चलो सेवा करते हैं तो कभी कहते हैं ओ किसी ने मेरे को टोली नहीं दी है, चाय नहीं पूछी, मैंने तो बहुत सेवा की, इच्छा रख लेते हैं, हाँ। एक बार एक भाई था, वो एक दादी के पास आया टोली लेने, उसका चेहरा खुश नहीं था, तो दादी ने पूछा तुम क्यों खुश नहीं हो, कहता है मैंने सारा रात सेवा की है, सारी रात मैं वॉचमैन रहा, हाँ, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, तो सारी रात मैं देखरेख में था। अच्छा, सेवा की है, तुम्हारे चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? सच्ची सेवा है तो चमक है ना चेहरे पर, खुशी है ना। तुम जाओ बाबा के कमरे में बैठो और देखो अंदर कौन सी इच्छा आ गई तुम्हारे अंदर मन में, जिसके कारण तुम्हारी खुशी गायब हो गई। सेवा तो की लेकिन अंदर कोई ना कोई इच्छा थी, पता है उसकी क्या इच्छा थी? किसी ने चाय नहीं पूछा, टोली नहीं पूछी है, मैंने सेवा की है, तो छोटी सी इच्छा परंतु इच्छा तो है ना, हा? वो इच्छा ही हमारी खुशी को गायब कर देती है। या नाम शान की इच्छा कि मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा शान नहीं हुआ, उसकी भी इच्छा, वो भी हमारी खुशी को गायब कर देती है। तो ये माया कोई ना कोई रूप से आकर के हमारे मन को अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सुबह अमृत वेले शक्ति का वरदान ले लो, ताकि आप सारे दिन में माया को परख पाओ, क्योंकि माया आती है किस रूप में, इच्छाओं के रूप में। जो हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं वो निकल आती है ना, कभी कभी निकल आती है ना, सुबह दोपहर शाम, और पता भी नहीं चलता। जैसे ही हम बाबा की याद में बाबा को भूल गए तो इच्छा माया आकर के खड़ी हो जाएगी। बाबा ने कहा माया क्या है, बाबा ने कहा माया चूहा है, मुरली सुनते हैं ना, और माया क्या है, माया एकदम बिल्ली की तरह है। माया क्या है, इच्छा ममता तृष्णा ये सब माया है ना, आकर के हमारे मन में विचार ले आते हैं ना ऐसे ऐसे इच्छा के, तो खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शक्तिवान इतने बनो ताकि आप परख सको माया को। तो इसलिए हमको परखने की शक्ति जमा करनी है, डिसर्नमेंट पावर, परखना। हमारी मन की ये जो एबिलिटी है, योग्यता है, ये कैसे पैदा होगी, परखना। माया आ गई इच्छा के रूप में, हमको पता ही नहीं चला, और हमारी खुशी भी ले गई वो भी पता नहीं चला, हम दुखी हो गए वो भी पता नहीं चला, धोखा खा रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है, इतना हमारी ताकत खत्म होती जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। इसका कारण क्या है, परखने की शक्ति की कमी। तो परख शक्ति कहाँ से आती है मालूम है, जितना हम बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा की मुरली में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या पवित्र चीज है क्या अपवित्र है, क्या सत्यता है क्या झूठ है, और क्या चैरिटी है क्या सिन है, पाप क्या है और चैरिटी क्या है, ये बाबा जो कंट्रास्ट बताते हैं ना मुरली में, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है नहीं करना है, आप सब सुनते हैं ना ये बाबा की मुरली में। तो ये जो बाबा हमको सब मुरली में सुनाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना सोना है कितना नहीं सोना है, बाबा ने हरेक डिटेल विस्तार के रूप में हमारे ब्राह्मण जीवन की बता दी है। तो यदि हम ये सब कंट्रास्ट जो है रखते हैं अपनी बुद्धि में, परख शक्ति इससे बढ़ती है, क्योंकि सारे दिन में परिस्थितियां आएंगी हमारे जीवन में जो हमारी खुशी को गायब कर देंगी, हैं? कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी सारे दिन में, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना राजयोग की, तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ना माना एग्जाम, सारे दिन में एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना, सुबह पढ़ो सारा दिन परीक्षा भी दो ताकि नंबर बनते जाएं। हम कहें हमने सुबह मुरली पढ़ ली, फिर सारा दिन हम यदि नहीं याद रखते हैं बाबा की शिक्षाओं को, तो कोई ना कोई परिस्थिति आकर के हमारी खुशी को गायब कर देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके अपनी परख शक्ति, माना जो बाबा ने विजडम दी है, दिव्य बुद्धि दी है, ये मुरली है, जितना हम बाबा की मुरलियों को बार बार पढ़ेंगे उतनी हमारी बुद्धि अच्छी होती जाएगी, समझ अच्छी होती जाएगी, परखने की शक्ति अच्छी होगी, तभी हम परीक्षा में से पार हो जाएंगे, तभी हम खुश रह सकेंगे। क्योंकि यदि सारे दिन में परीक्षा आई, किसी ने मान लो गुस्सा किया और हमको पता ही नहीं उसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, मान लो उसने गुस्सा किया हमने भी गुस्सा किया, पास हुए या पार हुए या फेल हो गए, यदि कोई गुस्सा करे और हम भी उसको जवाब दे दें तो क्या है, ये नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये परीक्षा थी और उसमें हमको दो चॉइस थी हमारे पास, या तो हम शांति से उससे बात करें, शांति से जो कोई गुस्सा करता है तो उस समय हम शांति से करें बात, क्योंकि शांति देनी है ना उसको भी, और प्यार से, चलो प्यार नहीं तो शांति, प्यार नहीं दे सकते किसी को तो शांति तो दे सकते हैं ना, हाँ, क्वाइट तो रह सकते हैं ना, शांत तो रह सकते हैं, लेकिन यदि हमने जवाब दे दिया उसको तो हमारे नंबर खत्म, विकर्म बन जाएगा ना, पाप हो जाएगा ना, अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो योग में बैठेंगे तो कौन याद आएगा? जिसके साथ गुस्सा किया है वो व्यक्ति बार बार आता रहेगा, कहेगा मेरा अभी बिल बिल पे नहीं किया अभी तक तूने, हैं, पे करो। हम बाबा को याद करने बैठेंगे वो जाने ही नहीं देगा आपको, ऊपर आ जाएगा आपके मन में, वही परिस्थिति आ जाएगी, वो व्यक्ति आ जाएगा, वो फीलिंग्स आ जाएंगी। ये बिल है कर्म का, तो इसको फिर पार करना है ना, इसको पे करना है। हाँ, जब आपके जीवन में बिजली का बिल आता है, पानी का बिल भरते हैं ना, तो भरने के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं कि हमने बिल पे कर दिया, अभी हल्के हो गए। तो ऐसे ही हमारे सारे दिन में जो भी परीक्षा आती है, टेस्ट आते हैं, सब बिल पे करने पड़ते हैं, हैं? लेकिन हम खुशी से करें, ना कि कंप्लेन करें, क्यों आया, क्यों आया, ये क्यों हुआ, ये क्यों क्यों में ना जा करके शांति से उसका बिल। हाँ, बिल समझते हैं, हाँ, पानी का बिल, बिजली का बिल होता है ना, तो ये भी सारे दिन में कितने आते हैं बिल, हाँ, उसको हमको पे करना है, लेकिन खुशी से करना है, बाबा से शक्ति लेकर के करना है। उस समय नहीं घबराना है, बाबा ये गुस्सा कर रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बाबा मैं क्या करूं। उस समय बाबा कहेगा, बच्चे मैंने तो तुमको पढ़ाई पढ़ा दी, तू क्यों नहीं याद रखता है। हाँ, एक बार बाबा ने कहा था मुरली में, टीचर कभी भी स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम मदद नहीं करता है, याद है वो मुरली। बाबा ने कहा, मैं टीचर हूँ तुम्हारा, और जब एग्जाम आ रहा है तो कहते है, टीचर तुम मदद करो, ये तो नहीं हो सकता, टीचर है ना बाबा, आपने स्वीकार किया बाबा को टीचर है, और एक परीक्षा के समय बाबा मदद करेगा क्या? बाबा कहेगा, मैंने पढ़ाई पढ़ा दी, लेकिन तुम्हारा फर्ज है पढ़ाई को याद रखना और परीक्षा में पास होना। और यदि उस समय हम घबरा रहे हैं तो बाबा भी डिटैच हो जाएगा, बाबा कहते हैं मैंने पढ़ा दिया, अभी तुम परीक्षा में पास हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति भरो, एक्यूमुलेट करो अपने अंदर, शक्तियों को भरते जाओ, जमा करते जाओ, ताकि सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, शांति की शक्ति है, खुश रहने की शक्ति है, दूसरों को सुख देने की शक्ति है, संतुष्ट रहने की शक्ति है, शक्ति है ना सब, परखने की शक्ति है, तो बाबा कहते हैं सब शक्तियां आप अपने अंदर जमा करते रहो। कैसे जमा करेंगे सारे दिन में? बहुत चांस है हम सबको, सारे दिन में बहुत बहुत हमको अपॉर्चुनिटीज आती है, मौका आता है ये जमा करने के लिए। कैसे? आप सुबह से लेकर रात तक अपनी पहचान से, कोई किसी को सहयोग चाहिए, आप सहयोग दे देते हैं तो आपका जमा हो जाएगा, है ना। और यदि कोई अपसेट है, आप अपसेट नहीं हुए, आप बिल्कुल शांत रहे, वो आपका जमा हो जाएगा शांति की शक्ति, है। किसी ने कुछ ऊंचा बोल दिया, आपने मिठास से उत्तर दिया, वो मीठी रहने की शक्ति जमा हो जाएगी, क्योंकि आपके कर्म में आ गया ना वो। एक है, हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे अंदर वो अनुभव कराते हैं, और सारे दिन में जो परीक्षा आती है उस फीलिंग्स को इमर्ज करना है हमको, उस शक्ति में रहना है, ताकि हम वो पार हो जाएं। तो इसलिए सारे दिन में हम बहुत कुछ जमा कर सकते हैं, बहुत कुछ जमा कर सकते हैं, सारा दिन चांस है। कोई लोग बहुत बातें करेंगे, आप शांत रहो, बातों में नहीं जाओ, तो आपका शांत रहने की शक्ति जमा हो जाएगी। कई आत्माएं बहुत गपशप लगाएंगे, आप नहीं जाते हैं उस चीज में, तो आपका समय किस में चला जाएगा? हाँ, जमा में चला जाएगा। और यदि दो लोग बात कर रहे हैं, हम जाके खड़े हो गए, सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं, ना लेना ना देना, हम बात क्यों, किसी के अंदर क्यों इंटरफेयर करें, हैं? तो हमारे अंदर जमा करना है अपने अंदर इन शक्तियों को, और सारा दिन कितने चांस है हमको है सहयोग देने के, शक्ति भरने के, और अपने अंदर समय की, बाबा कहते समय बर्बाद नहीं करो। समय जितना हम मधुबन में आए हैं कितने दिन है, थोड़े दिन है ना, जितना समय मिले हम बाबा को याद करें, बाबा की मुरलियों का अध्ययन करें, बार बार बाबा की मुरली को हम याद करें, बाबा ने हमको क्या बोला है सारा दिन, ये आपका जमा होता जाएगा। तो जितना आपका जमा है, जैसे बहुत बैंक में पैसा हो उसकी निशानी क्या होती है, खुशी और निश्चिंत है। तो हमारा भी अंदर ही अंदर मन में अच्छे अच्छे विचार बाबा की याद से जमा हो रहे हैं और मुरलियों का विचार सागर मंथन से जमा हो रहे हैं, तो उसकी निशानी क्या होगी, हमारा चेहरा सदा खुश रहेगा और बोल कैसे निकलेंगे, खुशी वाले। खुशी वाले बोल कौन से होते हैं, हा? कोई कुछ पूछे कहे मुझे पता नहीं है, ये खुशी वाले बोल नहीं है, हा? अभी नहीं पता है तो भी आप कह सकते हैं ठीक है हम पता करके बता सकते हैं, हा? ये खुशी वाले बोल है ना, अच्छे बोल है ना। तो किसी ने कुछ पूछा और हमने उसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, वो नहीं, हाँ उसके हम बात सुनते हैं, उसको हम उत्तर ठीक देते हैं, तो ये जमा होता जाता है ना। तो एक बहन थी एक देश में, उसका एक संस्कार था इग्नोर करने का, इग्नोर समझते हैं है ना, ऐसे ही कर देने का, कई बार ऐसे संस्कार होते हैं। तो वो हॉस्पिटल में काम करती थी, तो एक पेशेंट था, हाँ एक पेशेंट, तो उसने कुछ मांगा, हाँ तो ये बहन ने ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे कई होती है ना आदतें। तो वो जो पेशेंट था ना, वो जो पेशेंट था वो उठा, वो उसको मारने लगा, उसने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, हैं जो पेशेंट मांगता है तुम उसको दो, और तुम नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, ये क्या है। तो वो जो बहन थी ना उसकी आंखें खुल गई है, वो बच गई ना उस दिन। तो वो घर आई तो मेरे को कहती है मैं तो बच गई आज। मैंने कहा क्या हुआ हॉस्पिटल में, कहा हॉस्पिटल में मेरे को अपने संस्कार का पता चला, मैं और ब्राह्मणों के साथ कर देती थी, कोई कुछ पूछता था ऐसे मुंह कर देती थी, बेचारे दूसरे ब्राह्मण कहते थे ठीक है, परंतु आज जो है हॉस्पिटल में एक पेशेंट वो तो सहन ही नहीं कर पाया है, वो तो कहा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम कैसे ड्यूटी निभाते हो है, तो मैं तो बच गई आज। तो अभी मुझे पता चला कि ये जो संस्कार है ना, समझ रहे हैं ये बात है, ये हम ऐसे कर देते हैं भी, तुम उसको ठीक तरह से रिस्पेक्ट से सुनो, बात करो, यदि नहीं कर सकते तो कह सकते हैं ना हम नहीं कर सकते, परंतु ऐसे क्यों किया है, इग्नोर कहते हैं ना इसको, इसको देखा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो छोटे छोटे संस्कार हैं कभी भी हमारे जीवन को खत्म कर सकते हैं, किसी को गुस्सा आ सकता है ना, किसी के अंदर क्या भावना जागृत हो सकती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर के ये जो दबे हुए हैं ना अंदर के खराब आदतें, खराब संस्कार, ये हम निकालें तब हम खुश रह सकेंगे। तभी मैंने देखा कि वही आत्मा उसने अपने ऊपर इतना ध्यान देती है कि वो कोई भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि रियलाइज हो गया ना है, रियलाइजेशन हो गई ना। तो वो तो चलो उनके जीवन में ये परिस्थिति आई तो रियलाइज किया, परंतु बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान योग से अपने जो खराब कड़े संस्कार हैं उसको रियलाइज करो, उसको देखो कि हमारी खुशी को गायब तो नहीं कर रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को किस रूप में निभाओ, मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, और इस पढ़ाई में मुझे क्या बनना है, बाबा ने लक्ष्य दे दिया है, कौन सा लक्ष्य हम सबका, बोलिए, हम क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं राज्यों की हैं? नहीं, बाबा कहते हैं संगम युग में हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना रोज, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या लक्ष्य है? देवी देवता बनने का, और लक्ष्य है बाप समान बनने का। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस दुनिया में रहकर, इस शरीर में रहकर, सबके साथ निभा करके कर्मातीत स्थिति पाई ना, परफेक्शन को पाए ना बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? फॉलो फादर। हमको भी बाबा के फुटस्टेप्स पर, हाँ, जो बाबा ने किया वैसे करके हमको भी परफेक्ट बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो इस दुनिया में रहे ना, इतने लोगों के साथ रहे ना, तो कैसे न्यारे प्यारे रहे बाबा, हाँ? बातों में नहीं गए किसी के, हाँ? अपने मन की स्थिति को न्यारा रखा, प्यारा रखा। और बाबा ने लास्ट ये जो एक बहुत अच्छी बात बाबा ने की वो थी आशरीरी अवस्था। आशरीरी माना कि जैसे हम योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, तो एक है हम बाबा से बातचीत करते हैं, सूक्ष्म वतन में बात करते हैं ना बाबा से। फिर है एक स्थिति जिसको हम कहते हैं आशरीरी स्थिति। तो आशरीरी अवस्था माना कि एकदम हमारे मन के जो विचार है ना स्थिर हो जाएं, हिले नहीं, ये बात याद ना है, वो बात याद ना है, एकदम स्थिर, एकदम पवित्र और एकदम हल्के। कोई इच्छा नहीं है उन विचारों में, मन के विचार एकदम आशरीरी। ये शरीर कोई खींचे ही नहीं, ना हमारा पास्ट खींचे, ना कोई इंसान खींचे, ना कोई चीज खींचे, एकदम आश्री मन के विचार जो है, मन की स्थिति जो है एकदम स्थिर पवित्र है। आपने देखा होगा ब्रह्मा बाबा के जितनी भी फोटोस हैं हिस्ट्री हॉल में, है ना, खाना खाते, बाबा बात करते, खेलते, है बाबा बात कारोबार में आते, बाबा की ये स्थिति थी, शरीर से डिटैच। जितना हम शरीर से डिटैच उतना हमारी खुशी बनती रहेगी, जितना हम शरीर में आकर के शरीर के भान में खुशी खर्च होती जाएगी। तो हमको क्या करना है? खर्च करके फिर जमा करनी है या जमा ही करते जाना है ताकि खर्च ना हो? कौन सा पसंद है? हाँ, जमा करनी है। वो है हमारे यही वाली स्मृति कि मैं आत्मा आशरीरी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, निराकार आत्मा हूँ। और तीन एक्सरसाइज आप रोज करना ताकि हमारी खुशी जमा होती रहे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ। पहली एक्सरसाइज है कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ और कर्म इंद्रियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्म करती हूँ। एक तो ये सारे दिन में याद रखना है कि मैं कौन हूँ। आप बोलिए, मैं कौन हूँ? हाँ। दूसरा बाबा ने कहा ये एक्सरसाइज करो कि चलो आप बोल नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो मैं आत्मा एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ, और फरिश्ते के रूप में शांति के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। क्या याद रखेंगे? दूसरा, एंजल, फरिश्ता। पहला, मैं कौन हूँ? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। तो बोल भी सर्वश्रेष्ठ, आंखों से भी अच्छी चीज देखें, कानों से भी अच्छा सुने, ये है श्रेष्ठ। चलो ये कर्म नहीं कर रहे, तो दूसरा है, मैं कौन हूँ? एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ। फरिश्ते का काम क्या होता है? आना, मैसेज देना, चले जाना। और फरिश्ते के कान देखें, कभी दिखाते हैं कान? देखें एंजल्स, फरिश्ते के कान नहीं होते हैं। माना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस दुनिया में, ना गॉसिप सुनने का, ना निंदा करने का, है इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, कान नहीं होते हैं। देखें ना एंजल्स, फरिश्तों के कान नहीं दिखाते। तो आप सबके कान हैं? नहीं है। आप कौन हैं? फरिश्ता। तो फरिश्ता मीन्स भगवान का मैसेज देने वाले। बस जहां पर कोई दुखी है, फरिश्ता जाकर के उसको सुखी बना के आ जाता है। बस वो उसकी कहानियों में नहीं जाता। अच्छा ये हुआ, रामायण की कथा नहीं सुनता वो, महाभारत नहीं, वो तो जाकर के उसके मन को, अशांत को शांति दे करके आ जाता है। तो आप सब कौन हो गए? फरिश्ता। तो दो बातें, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा फरिश्ता हूँ। और तीसरा, तीसरी एक्सरसाइज करनी है रोज, कौन हूँ मैं? बाबा ने कहा ये बहुत याद रखो, निराकारी स्थिति। निराकारी समझते हैं? निराकारी का मतलब है कि जब हम परम धाम में हैं तो एकदम हम स्टिल हैं, स्थिर हैं। तो उस स्थिति में हम किसी की जजमेंट नहीं देते हैं, ये फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, हम कंपेयर नहीं करते हैं। निराकारी स्थिति, एकदम स्थिर, जो हो रहा है उसमें अच्छाई है, हिलते नहीं है, एकदम स्थिर रहते हैं, निराकारी स्थिति, ना पास्ट ना फ्यूचर, ना हमारा रोल ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी भी नहीं है। मैं आत्मा फ्री हूँ, शरीर से न्यारे हूँ, परम धाम में हूँ, एकदम स्थिर हूँ, सब बातों से दूर हूँ। तो जब हम ये वाली स्थिति का अभ्यास करते हैं, एंजल बन के रहते हैं, ब्राह्मण बन के, ये तीन एक्सरसाइज सारे दिन में करनी है, ताकि हमारा, हमारी जो खुशी है वो जमा होती रहे। आप सभी को पसंद है ये? तो एक हाथ की ताली बजा, एक हाथ की हा? तो मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। किस लिए आई हूँ इस दुनिया में? सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए। किसके द्वारा? आंखों द्वारा, मुख द्वारा, कान द्वारा। दूसरा, मैं फरिश्ता हूँ, शांति के वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। मेरे कान नहीं है, कान माना इंटरेस्ट ही नहीं है और बातों में जाने का। एंजल दुखी को सुखी बनाता है, अशांत को शांत करता है, जैसे बाबा है, दुख हरता है, सुख देता है। तो हम भगवान के बच्चे फरिश्ते हैं, जाकर के सभी को सुख देते हैं। तीसरा, मैं आत्मा निराकार, एकदम स्थिर ना, परम धाम में, कोई प्रकार का पास्ट याद भी नहीं, ना जिम्मेवारी ना रोल, मैं आत्मा फ्री, डिटैच, एकदम शांत, कोई जजमेंट नहीं। तो वो वाली स्थिति, ये तीन स्थितियां रोज आप एक्सरसाइज करो, तब जाकर आत्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी। ओम शांति। तो अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, गीत नहीं बजाएंगे, तो ये एक्सरसाइज करेंगे 3 मिनट। तो सबसे पहले आप सीधे होके बैठें, तो सबसे पहले हम परम धाम में जाएंगे। मैं आत्मा, मन और बुद्धि द्वारा इस दुनिया से पार आसमान, चांद, सितारों से भी पार परम धाम, जहां परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास पहुंचती हूँ। ये मुझ आत्मा का असली घर है, यहाँ कोई शरीर नहीं, हवा पानी कुछ नहीं, खाली आत्मा ज्योति बिंदु लाइट। इस घर में प्रवेश करती हूँ, शिव बाबा के सामने मैं आत्मा बैठ के शक्ति का अनुभव, गुणों का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिवान हूँ, गुणवान हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान अभी धीरे से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में आती हूँ। मैं आत्मा एंजल फरिश्ता हूँ, मुझ फरिश्ते का काम है जो भी आत्मा दुखी है अशांत है उसको शांति और सुख का अनुभव कराऊं। शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। मैं आत्मा फरिश्ता एंजल लाइट माइट के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। अभी मैं धीरे से इस साकार लोक में मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। इन कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस शरीर का आधार ले कर्म इंद्रियों द्वारा कल्याण का कर्म करते आई हूँ। ओम